उपस्थित महान भाव। सच बात तो यह है कि बताने की कोई बात ही नहीं, कारण कि प्रत्येक साधक में साधन विद्यमान है। अपने बनाए हुए असाधन ने उस विद्यमान साधन को ढक दिया है। जिस समय जागृत होती है उसी समय अपना बनाया हुआ असाधन हट जाता है और उसके हटते ही साधक और साधन में अभिन्नता हो जाती है। पर हमसे एक बड़ी भूल ये होती है कि अपने संबंध में अथवा दूसरों के संबंध में भूतकाल का निर्णय देकर अपने को अथवा दूसरों को बुरा समझने लगते हैं, वो भी सर्वांश में नहीं। यदि सर्वांश में किसी ने अपने को बुरा समझा होता तो उसे और कोई बुरा नहीं दिखाई देता, पर आज हमारी दशा यह है कि अपने को भी बुरा समझते हैं और दूसरों को भी बुरा समझते हैं। तो ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि हम सर्वांश में अपने को भी बुरा नहीं मानते और सर्वांश में दूसरे को भी बुरा नहीं मानते, किंतु आंशिक बुराई के आधार पर ये मान बैठते हैं कि दूसरे लोग अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है। क्या होता है? ये होता है कि जब आप स्वयं ही अपने को अच्छा नहीं मानते अथवा दूसरे को अच्छा नहीं मानते तो भला सोचो तो सही, आप अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप कहेंगे हम अच्छे होंगे जब अच्छा काम करेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि बुरे कर्ता से अच्छा कर्म बनेगा तो आपके पास कोई इस बात का उत्तर नहीं है कि बनेगा। तो पहले कर्म अच्छा होगा कि पहले कर्ता अच्छा होगा? जरा ध्यान दें, यदि आप ये मान लें कि पहले कर्म अच्छा होगा तो बिना अच्छे कर्ता के कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता, और यदि आप ये मान लें कि पहले कर्ता अच्छा होगा तो फिर आपको वर्तमान में अपने को निर्दोष स्वीकार करना ही पड़ेगा। किंतु हम अपने को वर्तमान में निर्दोष स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। अगर आप राजी नहीं हैं तो फिर जीवन में निर्दोषता की अभिव्यक्ति हो ये संभव नहीं है। आप कहेंगे तो क्या हम अपने में दोषों को देखते हुए अपने को धोखा दें जो निर्दोष मान लें? अगर हम आपसे पूछें कि आप ईमानदारी से बताइए किए हुए दोषों का प्रभाव है जीवन में अथवा आप दोषी हैं, आप कहेंगे कि किए हुए दोषों का प्रभाव ही दोष है। अगर प्रभाव ही दोष है तो फिर वो दोष कभी मिट ही नहीं सकता। प्रभाव दोष नहीं होता, प्रभाव होता है दोष के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो जिसके द्वारा जो उत्पन्न होता है यदि वो न रहे तो प्रभाव नहीं रहता। इसलिए आज एक मौलिक प्रश्न आता है सामने और वो ये आता है, क्या आप अपने को भला मानने के लिए राजी हैं? क्या आप दूसरों को भला मानने के लिए राजी हैं? यदि राजी हैं तो आप भी भले हो सकते हैं और दूसरे भी भले हो सकते हैं। आप कहेंगे कि न तो हम अपने को भला मानने के लिए राजी हैं और न हम दूसरों को भला मानने के लिए राजी हैं, तो सच मानिए न आप भले हो सकते हैं और न आपके द्वारा दूसरे भले हो सकते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच साधन निष्ठ होना चाहते हैं और साध्य के अराग अनंत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बात स्वीकार ही करनी पड़ेगी कि वर्तमान मानव मात्र का सर्वथा निर्दोष है। वर्तमान क्यों निर्दोष है कि भाई जरा सोचो तो सही। क्या सोचो? ये सोचो कि दोष की उत्पत्ति होती है कि दोष की सत्ता है। ये मौलिक प्रश्न है। हमारे और आपके जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती है कि दोष की स्वतंत्र सत्ता है? यदि दोष की स्वतंत्र सत्ता है तो उसका नाम दोष है ही नहीं। क्यों? स्वतंत्र सत्ता जिसकी होती है उसमें कोई दोष नहीं होता। अगर आप ये कहें कि दोष की उत्पत्ति होती है, तो एक बात तो बताइए, कोई ऐसी उत्पत्ति आप बताइए कि जिसका विनाश अपने आप न हो। कोई नहीं बता सकते आप। कोई उत्पत्ति ऐसी होती ही नहीं कि जिसका विनाश न हो। तो भाई यदि दोष की उत्पत्ति हुई तो उसका विनाश उसी काल से आरंभ होता है जिस काल से दोष उत्पन्न होता है। इसलिए भूतकाल के दोष के आधार पर हम और आप दोषी नहीं हो सकते। हाँ, एक बात अवश्य है कि दोष जनित सुख का जो प्रलोभन है, उस प्रलोभन की भूमि में पुनः दोष की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न क्या रहा? कि प्रश्न ये रहा, क्या आज आपको इस बात पर निर्णय करना है कि अब हम दोष जनित सुख का भोग नहीं करेंगे? इतनी सी बात। अगर आप इस बात के लिए राजी हैं तो निस्संदेह आप परम निर्दोष हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि दोष जनित सुख का प्रलोभन तो हम त्याग ही नहीं सकते, उसे तो हम सुरक्षित रखेंगे ही, तब भी आप सर्वांश में दोषी नहीं हो सकते, सभी के लिए दोषी नहीं हो सकते, सर्वदा के लिए दोषी नहीं हो सकते, तब तक जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती रहेगी। बस इतनी सी बात है। तो भाई अब इन दो बातों में से एक बात आपको निर्णय करना है कि आप जीवन वो जीवन पसंद करेंगे कि जिसमें दोषों की उत्पत्ति होती रहे, अथवा वो जीवन पसंद करेंगे कि जहां निर्दोषता की अभिव्यक्ति रहे। इन दो में से किसी एक प्रकार के जीवन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप विचार करें, आज हमारी दशा क्या है? या तो अपने को बुरा समझते हैं या दूसरे को बुरा समझते हैं। और जब कोई और बुरा समझने के लिए नहीं मिलता तो आज का साधक कहता है मन बहुत खराब है, ठीक, बुद्धि ठीक नहीं रही, शरीर ठीक नहीं है, साथी अच्छे नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, गुरु महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, प्रभु ने कृपा नहीं की। बारे निर्णय, सबके कर्तव्य का यथेष्ट ज्ञान, सबकी भूल का यथेष्ट ज्ञान, और हमसे कभी भूल हुई है, हम कभी भूल कर सकते हैं, इस बात पर कोई चर्चा नहीं। जरा ध्यान तो दीजिए, हमें दूसरा बुरा कम मालूम होता है जब वो हमारे मन की बात पूरी नहीं करता, और हमें दूसरा अच्छा कम मालूम होता है कि जब वो हमारे मन की बात पूरी करता है। आप जरा कृपा सिंधु ये तो बताइए, क्या आपके मन में जो बात उत्पन्न होती है वो ऐसी होती है जो बुरी नहीं है? जरा ध्यान तो दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मन में कोई बुरी बात उत्पन्न ही नहीं होती, तब तो कोई संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे मन की बात पूरी न करे, कोई नहीं हो सकता। और अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मन में बुरी बात उत्पन्न होती है, तो मैं कहता हूं आपका सबसे बड़ा मित्र वही है जिसने आपके मन की बात पूरी नहीं की, क्योंकि बुरी बात में सहयोग देना ये तो आपके लिए हितकर नहीं होता, तो इस तरह से अगर आप सोचें तो अभी आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई मन की बात पूरी न होने के आधार पर आज हम दूसरों को बुरा समझने लगे हैं। आज का महाजन कहता है मजदूर अच्छा नहीं, आज का मजदूर कहता है महाजन अच्छा नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा अगर ठीक नहीं है तो आप गलत क्यों होते हैं भाई? आप तो ठीक बने रहिए। आप कहें कि जब तक दूसरा ठीक नहीं होगा हम ठीक हो ही नहीं सकते, तो सच मानिए आप कभी ठीक नहीं हो सकते। क्यों? आपने पहले ही पराधीनता स्वीकार कर ली और इस बात को मान लिया कि जब दूसरे लोग ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे। ये मालूम है क्या है? ये प्रतिक्रिया है, ये निर्णय नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है कि दूसरों ने हमारा हानि पहुंचा दी। जो व्यक्ति, जो समाज, जो देश, जो वर्ग अपने दुख का कारण दूसरों ही को मानता रहेगा, आप सच मानिए वो कभी विकास नहीं कर सकता, उसका कभी विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने दूसरा अपने दुख का कारण मान लिया तो आप तो अपने दुख मिटाने में स्वाधीन नहीं रहे ना, और जिस कार्य में आप स्वाधीन नहीं है उस कार्य में सिद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भाई बड़ी ठंडी तबीयत से, धीरज के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा, क्या सचमुच हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है? यदि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है बताओ कौन है। जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तब आपके सामने जगत आएगा, जगत, अथवा श्रद्धा रखते होंगे तो प्रभु आएंगे। इन्हीं बातों को न मानेंगे, अपने से भिन्न या तो जगत को मानेंगे अथवा अपने से भिन्न प्रभु को मानेंगे। जगत को मानेंगे इंद्रिय ज्ञान के आधार पर, प्रभु को मानेंगे श्रद्धा के आधार पर। किंतु विचार तो करो, जगत किसे कहते हैं? जो पर प्रकाश है, जो अपने को अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकता। जगत किसे कहते हैं? जिसमें सतत परिवर्तन है। जगत किसे कहते हैं? जिसमें अदर्शन है। जरा ध्यान तो दीजिए, आप पर प्रकाश नहीं हैं, आप स्वयं अपवाद प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो पर प्रकाश नहीं है स्वयं प्रकाश है, भला उसको दुख देने में पर प्रकाश समर्थ होगा? ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, जो जगत अपने को अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकता, जो जगत क्षण मात्र भी एक स्थिति में नहीं रह सकता, वो जगत उसको दुख देने में समर्थ होगा जिसमें कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं? जो स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश को पर प्रकाश दुख देने लग जाए, जरा ध्यान दीजिए, और स्वयं प्रकाश इस बात का निर्णय मान ले कि जगत ने हमको दुख दिया, जगत ने हमको दुख दिया, तो ये उसका मानना क्या उसकी ईमानदारी है या उसका ज्ञान है? न ज्ञान है न ईमानदारी, तो फिर है क्या? तो फिर है क्या कि जगत की दासता ने, जगत की दासता ने जगत के द्वारा दुख देने की बात पढ़ाई, सिखाई, बताई, जगत की दासता ने। अब जरा सोचो तो सही, जगत की दासता स्वीकार किसने की? जगत की दासता किसने स्वीकार की? तो आपको विवश होकर मानना पड़ेगा मैंने की। तो दुख का कारण कौन हुआ? दुख का कारण कौन हुआ? आप कहेंगे मैं हुआ। जब जगत दुख का कारण मैं हुआ तो क्यों हुआ? कि जगत की दासता स्वीकार की। अच्छा भाई, जब आपको दुख का कारण मालूम हो गया कि जगत की दासता स्वीकार करने से मैं दुखी हुआ, अच्छा भाई उस दासता का त्याग कर दो, दुख मिट जाएगा। आप कहें कि नहीं नहीं दुख मिट ही नहीं सकता, अगर दुख नहीं मिट सकता तो दुख के कारण का ज्ञान आपको कैसे हो गया? कैसे आपने निर्णय दे दिया कि अमुक हमको दुख देता है? ये निर्णय तो ज्ञान पूर्वक न होगा भाई। अमुक वर्ग कहो, अमुक व्यक्ति कहो, अमुक अवस्था कहो, अमुक परिस्थिति कहो अगर हमको दुख देती है तो इस बात का ज्ञान के बिना निर्णय हो नहीं सकता। तो जब आपके ज्ञान का ही इसमें विरोध है कि भाई अगर हमारे जीवन में से वस्तुओं की दास्ता निकल जाए तो हमारे लिए वस्तु का न होना दुखद नहीं है, यदि हमारे जीवन में से व्यक्तियों की दास्ता निकल जाए तो व्यक्तियों का होना हमारे लिए दुखद नहीं है, यदि हमारे जीवन में से परिस्थितियों की दास्ता निकल जाए तो परिस्थितियों का होना हमारे लिए दुखद नहीं है, किंतु न तो हम वस्तु की दास्ता का त्याग करेंगे, न हम व्यक्ति की दास्ता का त्याग करेंगे, न हम परिस्थितियों की दास्ता का त्याग करेंगे, और दिन रात सोचते रहेंगे हम दुखी हैं और हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। ये साधक का सोचना नहीं है, ये विचारशील का सोचना नहीं है, ये तो उसका सोचना है कि जो एकमात्र सुख भोग में ही निरंतर रत रहना चाहता है, जो सुख की दास्ता से ऊपर नहीं उठना चाहता है, उसका ये सोचना ठीक है। आप ध्यान दीजिए और स्वयं विचार कीजिए कि पर प्रकाश वस्तुएं स्वयं प्रकाश को दुख नहीं दे सकती। अब यहां एक दार्शनिक थोड़ा विचार कर लो, आप कहेंगे कि हम ये मानने के लिए राजी नहीं हैं कि वस्तुओं से भिन्न भी हमारा जीवन है। मेरे जो सोचने का ढंग है वो कुछ अपने को सामने रख करके है। अगर कल्पना करो हम ये मान लें कि वस्तुओं से भिन्न हमारा कोई जीवन ही नहीं है, वस्तु ही हम हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं वस्तुओं से भिन्न हमारा कोई जीवन नहीं है, ये ज्ञान वस्तु को है कि आपको है? इस बात का जो ज्ञान हुआ आपको कि वस्तुओं से भिन्न हमारा जीवन नहीं है, तो ये ज्ञान वस्तु को है? अगर ये ज्ञान वस्तु को होता तो सच मानिए एटम बम ये कह देता कि मैं निर्दोष जापानियों के ऊपर नहीं गिरूंगा अथवा कमजोर जापानियों के ऊपर नहीं गिरूंगा, इनकार कर देता। लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और आप जानते हैं अगर वस्तु में इस बात का ज्ञान होता तो जिस विज्ञान बेटा ने एटम बम निकाला था उसकी बुद्धि उसको ये कहती कि अरे अरे भाई देख, अरे भाई देख, एटम बम तो मेरे द्वारा तैने निकाला है ना, मेरे द्वारा तैने निकाला है, और तू अपने को पैसों के बदले में बेचकर क्यों मेरा दुरुपयोग करता है, उसकी बुद्धि उसे रोक देती। लेकिन न उसकी बुद्धि ने रोका, न एटम बम ने रोका। क्यों नहीं रोका? कि भाई वस्तु जो होती है उसमें शक्ति तो होती है, ध्यान दीजिए, वस्तु में शक्ति तो होती है किंतु वस्तु में ज्ञान नहीं होता। साधारण लोग क्या समझते हैं कि शक्ति के उपयोग को ज्ञान मान लेते हैं, शक्ति के कार्य को ज्ञान मान लेते हैं, और जो शक्ति के कार्य को ज्ञान मान लेते हैं वही लोग वस्तुओं के दास बन जाते हैं। आज क्या कारण है? एक आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। इसलिए बड़ा आदमी हो गया क्योंकि मैं मिल ओनर हूं और मेरे पास बहुत सी संपत्ति है, बहुत सा सामान है। अच्छा भाई, सामान होने से, संपत्ति होने से अगर तुम बड़े आदमी हो गए तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो संपत्ति बड़ी आदमी हो गई कि तुम बड़े आदमी हो गए? तुम तो लोभी हो गए, लोभी। ध्यान दीजिए, संपत्ति होने से अगर तुम्हें बड़ापन मालूम होता है तो संपत्ति का बड़ापन व्यक्ति के जीवन में लोभ को जन्म देता है, व्यक्तियों का बड़ापन व्यक्ति के जीवन में मोह को जन्म देता है, परिस्थितियों का बड़ापन व्यक्ति के जीवन में परछिन्नता का जन्म देता है। अब आप सोचें और हर भाई सोचे कि लोभी को तुम बड़ा आदमी कह सकते हो? लोभ को, मोह को, परछिन्नता को, काम को, इनको आप बड़ा आदमी कह सकते हैं? इनके आधार पर कोई बड़ा हुआ है? जब विचार करेंगे तो आपको इनकार करना पड़ेगा, नहीं कह सकते। तो फिर आपका बड़ापन, आपकी महानता, आपकी विशेषता वस्तु पर निर्भर नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप सचमुच बड़े आदमी हैं तो आपके द्वारा वस्तुओं का सदुपयोग होगा, आपके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होगा, आपके द्वारा व्यक्तियों की सेवा होगी, ये तो हो सकता है। तो यदि आपके जीवन से व्यक्तियों की सेवा होती है, यदि आपके जीवन से वस्तुओं का उत्पादन और उनका सदुपयोग होता है, तो आप बड़े आदमी हुए, कोई वस्तु बड़ी आदमी नहीं हुई। उसी प्रकार यदि आप अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी, अपने प्राणों का उपयोग कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी, अपनी इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का उपयोग कर सकते हैं तो आप बड़े आदमी। लेकिन शरीर बड़ा आदमी हो जाए, इंद्रियां बड़ी आदमी हो जाए, प्राण बड़ा आदमी हो जाए, मन और बुद्धि बड़े आदमी हो जाए, ये बात सही सिद्ध नहीं होती। इसलिए भाई, जड़ जगत, परप्रकाश जगत, परिवर्तनशील जगत आपको दुख नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे, अच्छा ये बात हम माने लेते हैं कि जगत ने हमको दुख नहीं दिया, तो ये बात हम कैसे न माने कि प्रभु ने हमें दुख नहीं दिया? क्यों नहीं उन्होंने ऐसा विधान बनाया, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा विधान बनाया कि किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई बुढ़ा नहीं होता? मैं आपसे पूछता हूँ, आज अगर मृत्यु वाला विधान रोक दिया जाए, तुम्हारी बात मान ली जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिस जगह आप बैठे हैं आपको जगह मिल जाती? अगर जितने प्राणी हमसे पहले हुए हैं या सृष्टि में आज तक उत्पन्न हुए हैं, अगर वो सब प्राणी आ जाएं, तो महाराज एक दफे से हम आपको घटना सुनाएं। हम नेपाल यात्रा करने जा रहे थे, तो रेलवे ने जो ट्रेन दी वो थी मालगाड़ी का डिब्बा। तो महाराज हम घुस तो गए भीतर, और जो भीड़ का रेला लगा, तो महाराज ये दशा आई कि इससे तो मर जाना बहुत अच्छा है, यात्रा करना अच्छा नहीं। तो निर्बल के बलराम वाली बात उस वक्त याद आएगी महाराज, और वो गाड़ी के बीच का जो कोना होता है उसमें आए गए, उसमें आए गए। और आने से हम तो ये सोचते थे कि भाई कौन सा क्षण होगा जो उसे छुटकारा मिले। तो जरा सी भीड़ में ये दशा हो गई, और यदि सभी मरे हुए प्राणी इकट्ठे हो जाए यहाँ, तो क्या दशा होगी? जरा सोचो सही, जरा सोचो सही अपनी बुद्धि पर। तो भाई ऐसी बात नहीं है, ध्यान देना इस बात में है कि भाई जो विधान है, जो विधान है वो हमसे आपसे अधिक ईमानदार है, हमसे आपसे अधिक हितकर है, उपयोगी है। किंतु आज हमारी दशा ये हो गई कि मन की बात पूरी न होने से, अपनी कामना की अपूर्ति के दुख से क्षोभित हो गए, क्रोधित हो गए, और उस दुख का कारण दूसरे को लगे मानने। तो मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि आप कहेंगे, अच्छा भाई जगत तो हमको दुख नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु ने ऐसा विधान क्यों बनाया जो जीवन में दुख है? बहुत ठीक बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में से दुख का हिस्सा निकालने देते हैं, कौन सा? कि पानी न पीने से जो दुख होता है वो निकाल दो, और भोजन न मिलने से जो दुख होता है वो निकाल दो। अच्छा फिर हम आपसे पूछते हैं, पानी पीने के सुख का आप भोग कर सकते हैं? भोजन करने के सुख का आप भोग कर सकते हैं? ये तो किसी ऐसे आदमी से पूछिए जिसके पास भोजन बहुत हो और भूख न लगती हो, कितना वो पश्चाताप करता है, कितना वो दुखी होता है, और वैद्य और डॉक्टरों के पास जाता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी तरीका बताइए कि किसी तरह भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल। अरे भले आदमी भूख नहीं लगती है, तो भूख लगने में तो तकलीफ ही मालूम होती है, अच्छा तो क्यों उससे परेशान होते हो? बोले नहीं महाराज, बिना खाए रहा ही नहीं जाता, बिना खाए रहा नहीं जाता, भूख लगती नहीं है। अब बड़े दुखी हो गए। तो क्यों दुखी हो गए? कि उन जीवन में से दुख निकल गया। तो ध्यान दीजिए, जब जीवन में से दुख निकल जाता है मेरे भाई, तब जीवन में सुख के भोग का कोई स्थान ही नहीं रहता, कोई स्थान नहीं रहता। तो ये जो आप सोचते हैं कि हमारे और जीवन में से दुख का अंश बिल्कुल निकाल दिया जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि दुख का अंश बिल्कुल निकलने के बाद क्या आपका जीवन जीवन है? जीवन नहीं रहेगा। क्यों? सुख भोग ही नहीं सकते, और जब सुख भोगते हैं तब बोले दुख भोगना ही पड़ेगा। अब चाहते आप क्या हैं? कि प्रभु ऐसा विधान बनाते कि सुख तो भोगते रहें और दुख न भोगना पड़े। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा भी जीवन है, ऐसा भी जीवन है कि जिसमें आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उस जीवन के लिए इस समय जो आप सुख भोगते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उस सुख का त्याग कर दें, लेकिन उस सुख के प्रलोभन का आप त्याग कर सकते हैं क्या? उस दुख के भय का आप त्याग कर सकते हैं क्या? यदि दुख के भय का त्याग कर सकते हैं, यदि सुख के प्रलोभन का त्याग कर सकते हैं, तो इसी जीवन में आपको ऐसा जीवन नहीं मिल सकता है कि जिसमें दुख की गंध भी नहीं है। किंतु वो जीवन कब मिलेगा? जब आप अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे, जब आप अपने सुख हेतु किसी और को नहीं मानेंगे, जब तक आप दूसरों को अपने सुख का हेतु मानेंगे, जब तक आप दूसरों को अपने दुख का हेतु मानेंगे, तब तक वो जीवन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं मिलेगा? कि इसलिए नहीं मिलेगा कि जो दूसरों को सुख का हेतु मानता है उसमें नवीन राज की उत्पत्ति होती जाती है, और जो दूसरों को दुख का हेतु मानता है उसमें द्वेष की अग्नि जलने लगती है। तो जहां राज की पराधीनता हो और जहां द्वेष की अग्नि जल रही हो, मां भला जीवन कैसे मिल सकता है? जरा ध्यान दीजिए, वहां वो जीवन कैसे मिल सकता है कि जिसमें दुख की गंध नहीं है? तो भाई, अगर आप कहें हम अपने सुख का कारण किसी और को क्यों न माने, तो वो इसलिए न माने कि कोई और आपके सुख का कारण है नहीं। आप कहेंगे ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती। तो ये क्यों नहीं समझ में आती है? कि जब भूख लगती है और कोई प्यार पूर्वक भोजन देता है तो हमको जरूर सुख मालूम होता है। बहुत ठीक। तो सुख आपको मालूम होने में तीन बातें हुई, एक तो भोजन के देने वाला, भोजन और भूख का लगना, और भोजन की शक्ति, भोजन करने की शक्ति। अब ये जो चीजें आपको मिली सुख के कारण दिखाई दी, तो हम आपसे पूछते हैं कि भोजन की शक्ति का ह्रास होता है कि नहीं, सुख का विनाश होता है कि नहीं, और जो तुम्हें दूसरा भोजन देता है उसमें देने का अभिमान होता है कि नहीं? आप कहें ये तो सब होता है, इन सबके बदले में जो सुख मिलता है वो इतना काफी है कि उसके लिए सारी पराधीनता सही जाए? अगर आपको काफी मालूम होता है तो हम और आप सुख की दासता से मुक्त नहीं हो सकते। और अगर आपको ये मालूम होता है कि भाई क्षणक सुख के लिए बहुत सी पराधीनता सहनी पड़ती है, तो फिर क्या करें? क्या भोजन करना बंद कर दें? ये मतलब नहीं है। तब ये करें कि भोजन से अपना मूल्य बढ़ाएं। मूल्य बढ़ाने का अर्थ क्या है? कि यदि भोजन नहीं मिला है तो भोजन का चिंतन न करें। आप कहें भोजन का चिंतन करते हैं क्या? भूख लगने पर तो भोजन का चिंतन होता है। भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जितना आप फास्टिंग करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, उस दिन तो आपको भोजन का चिंतन नहीं होता, लेकिन क्या उस दिन भूख नहीं लगती? उस दिन भूख लगती है और भोजन का चिंतन नहीं होता। क्यों? आपका निर्णय ये हो जाता है कि हमको भोजन नहीं करना है। तो जब आपका ये निर्णय हो जाएगा कि भोजन से हमारा मूल्य अधिक है, भोजन का मूल्य हमसे कम है, क्यों? क्यों? भोग्य वस्तु का विनाश होगा, भोगने की शक्ति का ह्रास होगा, इसलिए भूख से भी हमारा मूल्य अधिक है और भोजन से भी हमारा मूल्य अधिक है। इस दिन की बात सुनाया आपको, मैं गंगा किनारे अकेला रहता था, एक संत से बात होने लगी। मैंने कहा कि आपको सायंकाल की भूख नहीं लगती है? उन्होंने कहा भूख तो लगती है। मैंने पूछा क्या खाते हो? तो हंसकर कहा भूख को खाते हैं, भूख को खाते हैं। अब आम लगती है? उन्होंने कहा भूख तो लगती है। मैंने पूछा क्या खाते हो? तो हंसकर कहा भूख को खाते हैं, भूख को खाते हैं। अब आप लोगों को तो आश्चर्य होगा, कहीं भूख भी खाई जाती है? लेकिन हाँ भाई, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जीवन की जिसमें भूख खाई जाती है। तो भूख से भी यदि हम अपना मूल्य बढ़ा लें तो भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। अगर आपने भूख से अपना मूल्य नहीं बढ़ाया, बोले भूख से अपना मूल्य बढ़ाना क्या? कि भूख लगने पर जब आप इतने अधीर हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हाय हाय रे भोजन नहीं मिलेगा, तो तब जीवन ही नहीं रहेगा। तो भाई जीवन तो भोजन के मिलते हुए भी नहीं रहेगा। आपने सच मानिए, अगर हम भूखे मर जाएंगे तो आप खाते खाते भी मर जाएंगे, अमर नहीं हो जाएंगे। भोजन आज तक किसी को अमर कर नहीं सका, कर सकेगा नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भूख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ और भोजन से भी अपना मूल्य बढ़ाओ। तात्पर्य क्या निकला? कि दुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ और सुख से भी अपना मूल्य बढ़ाओ। जब आप दुख और सुख दोनों से अपना मूल्य बढ़ाएंगे, तब क्या होगा कि आप फिर अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे, अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे। जब आप अपने सुख दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे तो न तो नवीन राज की उत्पत्ति होगी और न द्वेष की अग्नि जलेगी। जहां राज की उत्पत्ति नहीं होती, ध्यान दीजिए, जब जीवन में राज की उत्पत्ति नहीं होती तब मालूम है क्या होता है, तब सहज योग की प्राप्ति होती है। राग रहित होते ही सहज योग की प्राप्ति, किसको, मानव मात्र को। ये मत सोचिए कि जो ईश्वर को मानता है उसी को योग की प्राप्ति होती है, अथवा जो आत्मा को मानता है उसी की योग की प्राप्ति होती है, अथवा जो जगत को मानता है उसी की योग की प्राप्ति होती है। ऐसी बात नहीं, चाहे आप जगत को माने, चाहे आप आत्मा को माने, चाहे आप ईश्वर को माने, ये आपकी अपनी मर्जी की बात है। जगत के मानने से, आत्मा और ईश्वर के मानने से वास्तविकता में कोई अंतर पड़ता हो ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता क्या कि जब आप राग रहित होंगे तब आपको सहज योग की प्राप्ति होगी। कोई कोई साधक ऐसा कहते हैं कि जब हम शांत होना चाहते हैं या शांत जब हम बैठते हैं तब हमारे चित्त में ऐसे ऐसे स्मरण होते हैं, ऐसे ऐसे स्मरण होते हैं कि जो हमको अच्छे नहीं लगते। बात ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे स्मरण हो सकते हैं तो क्यों होते हैं कि वो जो स्मरण होते हैं ऐसे ऐसे जो अच्छे आपको नहीं लगते हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो आप ये पहले ही से सोच लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि अब चित्त में कोई स्मरण न हो, ये चाहते हैं। तो जब कोई भी चाह पैदा हो जाती है तब स्मरण रहित दशा हो ही नहीं सकती। ये बड़ी एक पहेली है। जो आदमी ये सोचता है कि मैं निर्विकल्प समाधि का सुख लेना चाहता हूं, कम से कम जब तक ही वो चाहता है तब तक तो नहीं होगी, ये निश्चित बात है। तो होगी कैसे, बड़ी आश्चर्य की बात है कि चाहने पर निर्विकल्प समाधि नहीं होगी तो क्या न चाहने से होगी। कि भाई देखो, न चाहना जो है वो प्राप्त नहीं किया जाता, वो अपने आप प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है कि जब आप अपनी वर्तमान की निर्दोषता में अविचल श्रद्धा करते हैं। अविचल श्रद्धा कैसी, कि भाई जब आप ये सोच लेते हैं कि भूतकाल हमारा चाहे जैसा रहा हो और भूतकाल चाहे जिसका चाहे जैसा रहा हो, किंतु वर्तमान तो हम सबका परम निर्दोष है, परम निर्दोष है। क्यों निर्दोष है, कि भाई हमने आज ये मान लिया है, क्या मान लिया है, कि हम अपने सुख का अपने दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे। जब हम अपने सुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानेंगे तब वस्तु और व्यक्ति से जो हमारा संबंध है, वस्तु और व्यक्ति की जो हमारे में आस्था है, आस्था ठहराव, तो वो ठहराव मिट जाएगा और वो संबंध टूट जाएगा। आप कहेंगे बाबा जी आपने तो ऐसी बात बता दी कि जिस प्राण प्यारी के बिना हम रह नहीं सकते तुम कहते हो संबंध तोड़ दो, जिस प्राण पति के बिना हम रह नहीं सकते संबंध तोड़ दो। अजी हम नहीं कहते, तुम रोज तोड़ते हो लेकिन बार बार जोड़ते हो। बोले कैसे, हम आपसे पूछते हैं जिसे तुम अपनी प्राण प्यारी कहते हो गहरी नींद में क्यों भूल जाते हो, भैया बताओ तो सही, गहरी नींद में तुम्हारी प्राण प्यारी कहाँ रहती है, गहरी नींद में तुम्हारा मिल कहाँ रहता है, गहरी नींद में तुम्हारा पद कहाँ रहता है, गहरी नींद में ईमानदारी और बेईमानी से जोड़ा हुआ धन कहाँ रहता है, बताओ, है वह आपके साथ, है आपके साथ, आपको मानना पड़ेगा नहीं। अगर हम पूछें कि गहरी नींद में भैया तुमको क्या दुख था, कहेंगे कोई दुख नहीं था, एक ही दुख था कि जड़ता थी उसमें, जड़ता थी। हम कहें भैया एक ऐसी नींद भी है कि जिसमें गहरी नींद के समान दुख नहीं है किंतु जड़ता नहीं है, तो बोले वो नींद तो हमको बहुत पसंद आएगी। तो वो नींद किसको मिलती है, वो नींद उसको मिलती है जो अपने सुख दुख का कारण दूसरे को नहीं मानता, अपने सुख दुख का कारण दूसरे को नहीं मानता, लेकिन इस बात का बड़ा ध्यान रखता है, इस बात का कि कहीं मेरे द्वारा किसी को दुख न हो जाए, इस बात का ध्यान रखता है। आप कहेंगे कि जब कोई दूसरा किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, भला मैं कैसे किसी के दुख का कारण हो सकता हूँ। भाई ये बात तुम ठीक कहते हो, तुम हो नहीं सकते, लेकिन तुम होने की कोशिश करते हो, तुम होने की कोशिश करते हो, दूसरे को दुख देने की कोशिश करते हो। क्या इससे बढ़कर आप किसी को क्या दुख देंगे, जब आप दूसरे को बुरा समझ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, इससे बढ़कर आप और किसी को दुख देने का प्रयास ही क्या करेंगे। क्या अच्छा आप कहें कि अच्छा भाई आज से हम किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको ये व्रत लेना पड़ेगा। कोई दूसरा बुरा नहीं है, कोई दूसरा बुरा नहीं है, जब कोई दूसरा बुरा है ही नहीं, तो हम आपको चैलेंज देते हैं कि आप मन में बुरा संकल्प उठा तो लीजिए। नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि अपने दुख का कारण किसी को और न मानने पर भी, अपने सुख का कारण किसी और को न मानने पर भी, ये बात भी माननी पड़ेगी कि हम किसी को दुख देने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा दुख यही है जीवन में, मेरे ख्याल से आप सोचिएगा, इस पर विचार कीजिए, क्योंकि मानव सेवा संघ की नीति में अपना विचार किसी पर लादने का नियम नहीं है। आप सोचिएगा, जिस समय कोई आपको बुरा समझता है उस समय आपको कितना दुख होता है, उस समय आपको कितना दुख होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि उसी समय आपके मन में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि जो आपको बुरा समझता है उसके दोष देखने में आपकी प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है। जरा ध्यान दीजिए, हम ही को बुरा कहते हैं, ये भी तो बुरे हैं, ये बात उसी समय पैदा होती है। अगर आपको कोई बुरा नहीं समझता, जरा सोचिए उतने उस समय आपके मन में कितना धीरज होता है और एक विचार का उदय होता है। क्या तो देखो ये कितने भले आदमी हैं कि हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी भला आदमी मानते हैं। और उसका प्रभाव क्या होता है कि जब हमको कोई बुरा समझता है तब तो हमारे में ये प्रवृत्ति उदय होती है कि हम दूसरे के दोष देखने लगते हैं, और जब हमें कोई भला समझता है तो हमारे जीवन में ये प्रवृत्ति होती है कि हम अपने दोष देखने लगते हैं कि हाय हाय हम जैसे साधारण व्यक्ति को इतना आदर इतना प्यार। हम एक अपने बचपन की घटना सुनाए, हम बचपन में एक स्थान पर संत महात्माओं को दर्शन करने गए, तो जिन महात्माओं को दर्शन करने गए तो वहां हमको इतना अच्छा व्यवहार किया वहां के लोगों ने कि हम आपको क्या बताएं, आदर भी मिला, प्यार भी मिला और वस्तु भी मिली। तो हमारे मन में ये संकल्प उठा कि महात्माओं के दर्शन करने मात्र में इतना सुख मिलता है तो न जाने महात्मा होने में कितना सुख मिलता होगा। मैं सच कहता हूं आपसे, किसी ने मुझे उपदेश नहीं किया, लेकिन उन संत प्रेमियों के व्यवहार का असर इतना जीवन पर पड़ा कि भाई महात्माओं के दर्शन करने के लिए हम आए थे और उसमें इतना सुख मिला कि सुंदर सा भोजन भी मिला, आदर भी मिला, प्यार भी मिला, सम्मान भी मिला, सब कुछ मिला, तो न जाने महात्मा होने में क्या मिलता होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब आप किसी को बुरा समझने लगते हैं, तब दूसरों में क्या प्रतिक्रिया होती है, और जब आप किसी को भला समझते हैं तब दूसरों में क्या प्रतिक्रिया होती है। जब हमें कोई भला समझता है तब हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है, और जब हमें कोई बुरा समझता है तब हमारे जीवन में क्या प्रतिक्रिया होती है। इस संबंध में विचार करने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि भाई सबसे बड़ी सेवा अपनी और दूसरे की, अपनी और दूसरे की। इसी में मुझे मालूम होती है कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही हो सकता है जो किसी को बुरा नहीं समझता, वो सबसे बड़ा आदमी हो सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो भी हो सकता है जो किसी से सुख की आशा नहीं करता, जो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानता। जो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेगा वो निस्संदेह इसी जीवन में महापुरुष हो जाएगा, जो अपने सुख का कारण किसी और को नहीं मानेगा वो इसी जीवन में महापुरुष हो जाएगा, जो दूसरे को बुरा नहीं समझेगा वो महापुरुष हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों बातों के मानने में आपको क्या आपत्ति होती है, क्या कठिनाई होती है, और इन तीनों बातों के न मानने से आपकी क्या हानि होती है? अगर आप बता सके मुझे तो मैं जब 9 और 11 का जो समय है उसमें हर एक भाई में बात कर सकता हूँ कि क्या कठिनाई होती है और क्या हानि होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ न कोई कठिनाई होती है न कोई हानि होती है। हम सब महापुरुष हो सकते हैं। क्यों क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उससे हमारी जाति एकता है। महानता से मानव मात्र की प्राणी मात्र की स्वरूप की एकता भी है, जाति एकता भी है। स्वरूप भी स्वरूप की एकता से मतलब क्या कि दूरी है नहीं, भेद है नहीं। जाति एकता से क्या मतलब कि निष्ठ संबंध है। अब ये दार्शनिक चर्चा है कि भाई किसी ने जाति एकता मानी और किसी ने स्वरूप की एकता मानी, इस चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की अवश्य है कि आप दूसरे के साथ सबसे बड़ी भलाई यही कर सकते हैं कि आप उसे बुरा न समझें। वो चाहे जैसा है उसी पर छोड़ दें, लेकिन आप बुरा न समझें। जिस समय आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे, सुखियों को देखकर क्रोध नहीं आएगा महाराज, ईर्ष्या नहीं पैदा होगी, और दुखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा। जब दुखियों को देखकर अभिमान नहीं आएगा तो करुणा आएगी। जब सुखियों को देखकर क्षोभ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, तब प्रसन्नता आएगी। लेकिन आज हमारी दशा क्या है? आज हमारी दशा यह है कि जब कोई हमें सुखी दिखाई देता है अपने से अधिक, और उससे हमारी अगर ममता नहीं है तो क्रोध आता है, क्रोध। और इस बात को आज विकास समझा जाता है, बुद्धिमानी समझी जाती है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं इस बात में कि अपने से सुखियों को देखकर प्रसन्न हो ही नहीं सकते, और कोशिश ये करते हैं कि ये जो एक जगह सुख संपादित दिखाई देता है, ये मालूम होता है कि ये दूसरों के साथ अत्याचार किया है और अपने सुख का समझिया है। अगर हम आपसे पूछें कि कृपा सिंह ये बताओ तुम क्या चाहते हो, कि चाहते तो हम भी सुख का ही संपादन करना है, तो जिस सुख के संपादन को आप ये मानते हैं कि ये अनेक दुखियों के दुख से सुख संपादित हुआ है और वही आप चाहते हैं, तो क्या आपके जीवन से अनेक दुखियों को दुख नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा भाई। अंतर केवल इतना है कि अब तक ये अत्याचार करते रहे, अब हम करेंगे। तो भाई इसका नाम सुधार मैं तो नहीं मानता हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने यहाँ तक कहा, कम्युनिस्ट विचार के थे इलाहाबाद में, यहाँ तक कहा कि देखिए मैं ईश्वर पर तो विश्वास नहीं करता हूँ और तुम्हारे धर्म कर्म पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे तुम मालूम मालूम होते हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और उसने पिताजी कह के कहा, पिताजी कोई सुंदर बात बताओ। तो मैंने कहा एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि तुम किसी सुखी को देखकर क्षोभित मत होना, ये बात मान लो तुम। मैं नहीं कहता तुमसे कि तुम ईश्वर को मान लो, मैं नहीं कहता कि तुमसे कि तुम धर्म को मान लो, लेकिन किसी सुखी को देखकर क्षोभित मत होना। क्यों? जब तुम सुखी को देखकर क्षोभित नहीं होगे तब तुम्हारे जीवन में प्रतिहिंसा नहीं आएगी। जब प्रतिहिंसा नहीं आएगी तो चित्त शांत होगा, और जब चित्त शांत होगा तो उसमें विचार का उदय होगा। जब विचार का उदय होगा तब अविचार की निवृत्ति होगी, और जब अविचार की निवृत्ति होगी तो वास्तविकता का अनुभव होगा। देखो भाई, साधन का अर्थ ये नहीं है कि आज ईश्वरवादी इस बात की कोशिश करे कि दूसरे लोग ईश्वर को मान लें। साधन का अर्थ ये नहीं है कि आज अध्यात्मवादी ये कोशिश करे कि दूसरे अध्यात्मवाद को मान लें। साधन का अर्थ ये नहीं है कि आज भौतिकवादी ये कोशिश करे कि लोग आत्मा और परमात्मा को न माने। ये साधन का अर्थ नहीं है। साधन का अर्थ क्या है? आप जो मानते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप माने, और उस मान्यता के आधार पर अपने को इतना सुंदर बना लें, इतना सुंदर बना लें कि आपको अपने सुख दुख का कारण दूसरा न मालूम पड़े। आप कहें कि अगर कोई मालूम पड़े तो उसमें हानि क्या? कि भाई देखो, जब तक आपको अपने सुख दुख का कारण दूसरा मालूम पड़ेगा तब तक आप राग द्वेष रहित नहीं हो सकते, और जब राग द्वेष रहित नहीं हो सकते तो न तो भौतिकवाद की दृष्टि से आपको चिर शांति मिल सकती है और न आपका जीवन विधान हो सकता है। देखिए, भौतिक दर्शन ने हमें क्या दिया? हमें बड़ी सुंदर ये चीज दी कि भौतिक दर्शन पर विश्वास करने से हर भाई चिर शांति को पा सकता है, हर एक भाई बहन का जीवन समाज के लिए विधान बन सकता है। आप कहें कैसे? कि भौतिक दर्शन का तात्पर्य क्या है? भौतिक दर्शन का तात्पर्य यह है कि समस्त सृष्टि एक है। ये भौतिक दर्शन, जहां समस्त सृष्टि एक है तो कोई गैर होगा आपको मानना पड़ेगा नहीं, कोई और होगा आपको मानना पड़ेगा नहीं। जब गैरियत नहीं रहती जीवन में, जब गैरियत नहीं रहती तब क्या रहता है? प्रीति का उदय होता है। और जब कोई और नहीं रहता तब क्या होता है? बोले निर्भयता का उदय होता है। कोई और ही ना हमको भय देता है। आप तो भौतिक दर्शन से बहुत दूर हैं। अगर भौतिक दर्शन से दूर न होते तो अमेरिका को रूस का भय क्यों लगता, और रूस को अमेरिका का भय क्यों लगता, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान का भय क्यों लगता, और हिंदुस्तान का पाकिस्तान को भय क्यों लगता? आप सोचिए, सृष्टि एक है। जब सृष्टि एक है तो कोई और है ही नहीं। अब भाई जब कोई और नहीं है तो भय कैसा? जब कोई गैर नहीं है तो प्रीत क्यों नहीं? क्यों नहीं आज रूस और अमेरिका के बीच में मित्रता होती? क्यों नहीं आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मित्रता होती? क्यों नहीं आज एक प्रांत दूसरे प्रांत से मित्रता नहीं क्यों नहीं करता? क्यों नहीं आज एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रेम क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि वो भौतिक दर्शन पर भी आस्था नहीं रखता। तो भौतिक दर्शन की साधना का अर्थ क्या? आज से हम समस्त विश्व को एक मानेंगे, और समस्त विश्व को एक मानकर, समस्त विश्व को एक मानकर सब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। यही ना भौतिक दर्शन की साधना है। आप विचार कीजिए, हम किसी के साथ बुराई न करें, हम किसी का बुरा न चाहें, हम किसी को बुरा न समझें, ये क्या भौतिक दर्शन की साधना नहीं है? आपको मानना पड़ेगा है। आप कहेंगे कि जो हमारे साथ बुराई करते हैं क्या हम उनका भी बुरा नहीं चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ही दांत से आपकी जीभ कट जाती है महाराज, आपके ही दांत से आपकी जीभ कट जाती है, तो आप क्यों नहीं जीभ को हुक्म देते कि हाथ आओ पत्थर लाओ दांतों को तोड़ो? तोड़ो ना। आप कहेंगे भला हम कैसे एक मान सकते हैं? बाल तो हमारे उनके रंग में भेद, हमारे उनके कर्म में भेद, हमारे उनकी बोलचाल में भेद। कहेंगे किसी के सिर के बाल हों काले और दांत हों सफेद, रंग में भेद हटाओ, सिर को अलग काटो दांत को अलग तोड़ो। कोई कहे नहीं हमारे उनके कर्म में भेद, हाथ का और कर्म है पैर का और कर्म है काट के फेंक दो, आंख का और कर्म है पैर का और कर्म है निकाल के फेंक दो। सोचो भाई जहाँ आत्मीयता होती है, जहाँ एकता का भाव होता है, माँ कर्म का भेद में कोई भेद नहीं मालूम होता, माँ रंग और रूप के भेद में कोई भेद नहीं मालूम होता, माँ मान्यता के भेद में कोई भेद नहीं मालूम होता, तो भौतिक दर्शन ने हमें ये नहीं बताया, हमें ये नहीं बताया कि कोई बुरा है, कोई बुरा है, अपितु तो ये बताया कि हम और वो एक हैं। एकता का पाठ पढ़ाया, भिन्नता का पाठ नहीं पढ़ाया, भेद का पाठ नहीं पढ़ाया। जब हम और आप एक हैं, तो क्या हम आपके प्यार के अधिकारी नहीं हैं? क्या आप हमारे प्यार के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम आपको बुरा समझेंगे? अगर हम आपको बुरा समझेंगे तो अपने को भी तो बुरा समझेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भौतिक दर्शन की साधना क्या है? निर्भयता और प्रीति। और जहाँ निर्भयता होती है वहाँ प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग होने लगता है, और जहाँ प्रीत होती है वहाँ भेद मिटने लगता है। तो प्रीत और निर्भयता को संपादन करना ये भौतिक दर्शन की बात है। हाँ, ये दूसरी बात है कि निर्भयता का अर्थ हम ये लेंगे, निर्भयता का अर्थ ये हम लेंगे कि भाई हम किसी को भय नहीं दे सकते। जो किसी को भय नहीं देता वही निर्भय रह सकता है, और जो किसी को भी भय देता है वो भयभीत हो जाता है। आज आप जानते हैं आज की लड़ाइयाँ छिप कर होती हैं, अपने को बचा करके होती है। क्यों? भयभीत हैं। भयभीत होने से पल का सदुपयोग नहीं कर सकते। हमसे एक मिलिट्री वाले से बात हुई तो हमने कहा कि एक बात बताओ कि जितना लड़ाई का सामान खर्च होता है हो जाता है, क्या सचमुच उतने लड़ाई का सामान खर्च करने की जरूरत है? बोले नहीं स्वामी जी, अब हमारे यहाँ मिलिट्री में कानून बन गया है कि योग्य सिपाही वो माना जाता है जो कम सामान खर्च कर सके और लड़ सके। तो धीरे धीरे तो आप जानते हैं मनुष्य सत्य की ओर ही चलता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था भाई कि भौतिक दर्शन के आधार पर भी आप किसी को बुरा नहीं समझ सकते, आप किसी को गैर नहीं समझ सकते, आप किसी का बुरा नहीं चाह सकते, आप किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते। जरा ध्यान दीजिए, जब हमें किसी के साथ बुराई करना ही नहीं है, जब हम किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, तो वर्ग विभाजन कैसा हो, तो देश विभाजन कैसा, जरा ध्यान दो, वर्ग विभाजन कैसा, देश विभाजन कैसा, पार्टी फीलिंग कैसी, आ सकती बात नहीं आएगी। जब ये नहीं आ सकती, तब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि उस जीवन का लोग अनुसरण करेंगे। इसी का नाम है सुधार और सुधारक। सुधारक उसे नहीं कहते जो समाज में विद्रोह पैदा कर दे, सुधारक उसे कहते हैं जो समाज में एकता का जन्म दे। और एकता का जन्म बिना प्रीत के नहीं होता, और प्रीत बिना अपना माने नहीं होती। तो समस्त विश्व को जो अपना मान लेता है वो है भौतिकवादी, और उस भौतिकवादी के जीवन में प्रीति की गंगा लहराती है, निर्भयता की गंगा लहराती है, और सुख दुख की दास्ता से मुक्त होता है। क्यों? आपके सारे विश्व को अपना मानकर आप एक क्षण नहीं रह सकते दुखी होकर, सुखी होकर। अच्छा भाई, सारे विश्व को अपना मान लो, लाखों नौजवान इस वक्त मर रहे होंगे बैठकर, वो हिम्मत किसी में? ये जो आप सुख दुख का जो भोग करते हैं, सुख दुख का भोग करते हैं एक अपनी नई दुनिया बनाकर। अगर आप अपनी नई दुनिया नहीं बनाते तो न आप सुख का भोग कर सकते हैं, न दुख का भोग कर सकते हैं, क्योंकि इतना सुख है कि आप डर जाएंगे, और इतना दुख है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई, जब हम सारे विश्व को अपना मान लेते हैं तब सुख दुख का भोग नहीं करते, तो करते क्या है कि सुख दुख का उपयोग करते हैं। आज हम भौतिक दर्शन से भी बहुत नीचे गिर गए, बहुत नीचे गिर गए। तो जब भौतिक दर्शन से ही बहुत नीचे गिर गए, तो अध्यात्म दर्शन और आस्तिक दर्शन की तो भैया आरंभ ही नहीं होता। तो मेरा निवेदन ये था कि समस्त विश्व के साथ एकता स्वीकार करना मानव मात्र का पहला साधन है, पहला साधन है। और जब हम समस्त विश्व को एक को अपना मान लेते हैं या अपने से अभिन्न मान लेते हैं, तब क्या होता है कि सुख और दुख के भोग की सामर्थ्य ही नहीं रहती। न तो सारे विश्व का हम सुख भोग सकते हैं, न सारे विश्व का हम दुख भोग सकते हैं। जहाँ सुख दुख भोग की सामर्थ्य नहीं रहती, वहाँ सुख का उपयोग होने लगता है, दुख का उपयोग होने लगता है। बोले दुख का उपयोग किसमें होता है? विरक्ति में। सुख का उपयोग किसमें होता है? उदारता में। तो वो जो उदारता और विरक्ति है वो क्या करती है कि हमें भौतिक दर्शन से अध्यात्म दर्शन में प्रवेश कराती है। उदारता और विरक्ति, आप कहेंगे उदारता और विरक्ति कैसे प्रवेश करा देती है? कि उदारता जो है उसमें सुख भोग की रुचि का नाश हो जाता है, और विरक्ति जो है बोले उसमें तुसे दुख का भय नाश हो जाता है। तो जहां दुख का भय नाश हुआ और जहां सुख भोग की रुचि का नाश हुआ, वहां अपने आप सुख दुख से अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है। तो सुख दुख के उपयोग का नाम भौतिकवाद, और सुख दुख से अतीत के जीवन का नाम अध्यात्मवाद। कोई जहां सुख दुख से अतीत के जीवन की प्राप्ति होती है, फिर बोले वहां जहां सुख दुख से अतीत के जीवन की प्राप्ति है, वहीं परम प्रेम की अभिव्यक्ति भी है, अभिव्यक्ति भी है। तो वो जो परम प्रेम की अभिव्यक्ति है वो है आस्तिक दर्शन। कहने का मेरा तात्पर्य ये था, ये आपका मानव जीवन इतना सुंदर जीवन है, इतना सुंदर जीवन है कि भौतिक दर्शन की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दर्शन की दृष्टि से भी, आस्तिक दर्शन की दृष्टि से भी आप इतने सुंदर हो सकते हैं, इतने सुंदर हो सकते हैं कि आपकी आवश्यकता सभी को है, और आपकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं। जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं रहती वही मुक्त है, और जिसकी सभी को आवश्यकता रहती है वही भक्त है। तो आप भक्त भी हो सकते हैं, मुक्त भी हो सकते हैं, और इसी जीवन में हो सकते हैं अथवा अभी हो सकते हैं। तो मेरे अभी कहने से लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में बात सच्ची है। आप इसी क्षण से तीन बातें स्वीकार कर लीजिए, हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे। पहली बात, हमारे दुख का कारण कोई और नहीं। दूसरी बात, और हमारे सुख का कारण कोई और नहीं। तीसरी बात, जब आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे तब सर्व आत्मभाव की अभिव्यक्ति होगी। जब आप अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानेंगे, प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। और जब आप सुख कारण किसी और को नहीं मानेंगे, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होगी। सर्वात्मभाव, प्रेम और स्वाधीनता, यह है आपका मानव जीवन। जहाँ स्वाधीनता है वही मुक्ति है, जहाँ सर्वात्मभाव है वही एकता है, और जहाँ प्रेम है वही अगाध अनंत रस है। इसलिए भाई इस जीवन में हम सबको मानवता प्राप्त हो सकती है जिसमें पूर्णता निहित है।